मालाबार हिल्स, मुंबई। मुंबई के इस पॉश इलाके में बना संगमरमर का एक सुंदर सा मेंशन, जो सफ़ेद रंग से सराबोर था और किसी बड़े से रियासत के शाही महल जैसा लग रहा था, जिसके बाहर के बड़े से ब्लैक गेट के दाईं तरफ ब्लैक नेम प्लेट लगी थी, जिस पर लिखा था शांतिवन। उस बड़े से गेट से शुरू होता गलियारा अंदर वाले गेट पर जाकर ख़त्म होता था। गलियारे के दोनों तरफ बड़े बड़े गार्डन बने हुए थे, जिनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे थे, जो उस जगह की खूबसूरती को बढ़ाने का काम कर रहे थे। अंदर के गेट से दाईं तरफ पार्किंग एरिया था, जहां कई सारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। सब चमचमाती गाड़ियां, एकदम नई लग रही थीं। गेट के सामने ही सुंदर और बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था। उस बड़े से महल में अंदर बने पूजा घर में एक औरत पूजा कर रही थी। लगभग 45-50 की उम्र लग रही थी। उनकी रेशमी साड़ी, जूड़े में बंधे बाल, चेहरे पर अलग ही चमक और लबों पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो बड़े दिल से भगवान का ध्यान कर रही थी, शायद कुछ खास मांग रही थी। उसी घर में एक कमरे में एक आदमी, जिनकी उम्र भी उनके आसपास की लग रही थी, वो भावहीन सा खड़ा था और सामने देख रहा था, जहाँ एक और उन्हीं की उम्र का आदमी बेड पर लेटा हुआ था। वो रूम कम और हॉस्पिटल रूम ज़्यादा लग रहा था। वहीं पास में एक नर्स खड़ी थी। वो दोनों आदमी दिखने में एक जैसे ही लग रहे थे। जो आदमी खड़ा था वो नम आँखों से दूसरे आदमी को देख रहा था। इसी घर के सबसे बड़े कमरे में एक 25 साल के आसपास का लड़का अपने रूम में लगे बड़े से शीशे के सामने खड़ा था और भावहीन सा अपने अक्ष को देख रहा था। दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली गहरी आँखें, जिनमें जाने कौन सा राज कायद था। इतनी गहरी आँखें कि अगर कोई उसमें झाँकने की कोशिश करे तो बस डूबता ही चला जाए। उन काली गहरी आँखों में एक अनकहा सा दर्द और नफ़रत झलक रही थी। पतले पतले गुलाबी लब, जिसे उसने गुस्से से भिंचा हुआ था। उस गोरे हैंडसम चेहरे पर पसीने की बूंदें ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। मजबूत मांसपेशियां, गठीला बदन जो पसीने से तर था, बहुत ही आकर्षक लग रहा था वो, पर बेहद गुस्से में भी लग रहा था। उसने ऊपर से कुछ नहीं पहना हुआ था, बस नीचे ब्लैक लोअर डाला हुआ था, और उसकी बॉडी बड़ी ही कमाल की लग रही थी, एकदम फिट, बिल्कुल किसी एक्शन हीरो की तरह। जो लड़की उसे अभी देख ले वो उस पर मर मिटे, इतना दिलकश लग रहा था वो। उसका किलर लुक उस पर सूट कर रहा था, जैसे ये रॉब उसके लिए ही बना हो। वो खुद को एक टक शीशे में देख रहा था, तभी उसके कानों में अचानक ही एक मीठी सी आवाज़ पड़ी, डैडी। उस मिश्री सी मीठी आवाज़ के कानों में पड़ते ही उस शख्स के भाव एकदम से बदल गए। जो चेहरा अभी तक गुस्से से तमतमा रहा था, अब उस पर एक सुकून नज़र आने लगा था। उसके भिंचे हुए लब अब हल्के से खिंच गए थे। उसने बेड पर से टावल उठाया और उसके अपने गर्दन पर से घुमाते हुए कंधे पर डाला, और जैसे ही पीछे पलटा, किसी की छोटी छोटी बाहों ने उसके पैरों को जकड़ लिया। इसके साथ ही लड़के के लबों पर गहरी मुस्कान खिल गई। उसने सर झुकाकर नीचे देखा तो एक छोटी सी नीली आँखों वाली बच्ची अपना सर उठाकर उसे ही देख रही थी। उसके जैसा ही गोरा रंग, गहरी नीली नीली आँखें, जो इस वक्त मुस्कुरा रही थी। पतले गुलाबी प्यारे प्यारे लब, जिस पर सौम्य सी मुस्कान ठहरी हुई थी। घुटनों तक की सुंदर सी फ्रॉक पहने वो बच्ची एक सुंदर सी परी लग रही थी। इतनी क्यूट कि उसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार लुटाने का जी करने लगे। वो उस आदमी के पैरों से लिपटी हुई थी और सर उठाकर उसे बड़े प्यार से देख रही थी। उस आदमी, मतलब लड़के ने, नीचे झुककर उसको अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग डैडी, उस छोटी सी परी ने एक बार फिर अपनी खनकती आवाज़ में उसे विश किया। बस गुड मॉर्निंग, आप डैडी को गुड मॉर्निंग किसी नहीं देंगी, उस लड़के ने मुंह फुलाते हुए कहा, तो वो बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी निश्चल हंसी उस लड़के के लबों पर मुस्कान बनकर ठहर गई। बच्ची, जो कि 4 से 5 साल की लग रही थी, उसने उस लड़के के गाल पर किस्सी दी, फिर मुस्कुराकर बोली, अंशु ने डैडी को लव किया, अब डैडी को अंशु की विश पूरी करनी होगी। बताइए क्या चाहिए हमारी प्रिंसेस को, उस लड़के ने मुस्कुराकर सवाल किया। बदले में वो बच्ची ने सौम्य सी मुस्कान के साथ उसको देखते हुए कहा, मम्मा। उसके इतना कहते ही लड़के की मुस्कान कहीं गायब सी हो गई, वो एकदम से गंभीर हो गया। वो बच्ची अपनी छोटी छोटी आँखों को टिमटिमाते हुए बड़े आस से उसे देख रही थी, जबकि लड़के का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, डैडी ने आपको कितनी बार कहा है ना कि आपके डैडी भी वही हैं और मम्मा भी वही हैं, फिर क्यों आप बार बार यही मांगती हैं? आपकी मम्मा नहीं है और वो अब कभी वापस नहीं आ सकती, इसलिए भूल जाइए उन्हें। क्यों मम्मा वापस नहीं आएंगी? सब बच्चों की मम्मा होती हैं, फिर अंशु की मम्मा कहाँ है? वो बेबी के साथ क्यों नहीं रहती? बेबी को मम्मा चाहिए। जब तक मम्मा नहीं आएंगी, बेबी किसी से बात नहीं करेगी, खाना भी नहीं खाएंगी और आपकी बात भी नहीं सुनेगी,
पढ़ाई भी नहीं करेगी और बहुत शरारत करेगी, सबको परेशान करेगी और बैड गर्ल बन जाएगी। अब उस बच्ची ने भी गुस्से में जिद करते हुए कहा और उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी तो लड़का तेज आवाज में चीखा, छाया। वो इतनी तेज चीखा कि वो बच्ची सहम गई। उसकी नीली नीली आंखों में आंसू भर गए। वो आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगी। कुछ ही देर में एक 22-23 साल की लड़की दौड़ती हुई अंदर आई और घबराकर बोली, जी भैया क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें यहाँ इस घर में क्यों रखा गया है? एक बार फिर उस लड़के ने गुस्से में सवाल किया। उसका गुस्सा देखकर छाया ने सर झुकाकर धीरे से कहा, अंशु बेबी की देखभाल के लिए। ऐसे ख्याल रखती हो तुम उसका, वो अकेली यहाँ कैसे आई और तुम कहाँ थी? एक बार फिर उस लड़के ने गुस्से में सवाल किया तो माया ने सहमते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं बड़ी माँ के साथ पूजा करवा रही थी और बेबी सो रही थी, मुझे नहीं पता चला वो कब उठकर यहाँ आ गई। माफ कर दीजिए भैया, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना मुझे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाने में वक्त नहीं लगेगा। याद रहे तुम यहाँ अंशु की देखभाल करने के लिए हो तो वही करो, अगर तुम्हारे काम में जरा भी कमी नजर आई तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। छाया ने सर झुकाए हुए ही हामी भर दी तो उस लड़के ने आगे कहा, अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, लेकर जाओ अंशु को और तैयार करके लाओ इन्हें। छाया ने हाँ में सर हिला दिया और अंशु को लेने लगी तो अंशु आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगी। लड़के ने उस पर ध्यान नहीं दिया, छाया उसे लेकर वहां से निकल गई। अंशु नम आंखों से बस पीछे खड़े अपने डैडी को देखती ही रह गई। रूम से बाहर निकलते ही अंशु छाया के सीने से लगकर सिसकने लगी तो छाया ने माँ की तरह उसे अपने सीने से लगाकर पुचकारते हुए बड़े प्यार से कहा, बस बेबी इतना नहीं रोते, आपको कितनी बार कहा है भैया के सामने वो बात मत किया कीजिए, फिर क्यों आप हर बार उनसे वही कहती हैं? हर बार वो आपकी मम्मा का जिक्र होते ही गुस्सा हो जाते हैं और फिर आप रोने लगती हैं। आंटी डैडी मम्मा के बारे में बोलने पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अंशु ने सिसकते हुए ही सवाल किया, जिसे सुनकर छाया खामोश रह गई। आखिर क्या जवाब देती उस बच्ची को उसके सवाल का, जब वो खुद वजह नहीं जानती थी कि जिस बच्ची में उसके भैया की जान बसती है उसकी माँ का जिक्र होते ही वो इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? वो बस अंशु को चुप करवाने लगी।
वो लड़का अब भी गुस्से में वहीं खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी कानों में एक आवाज गूंजने लगी, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, न मेरा तुमसे कोई रिश्ता है और न ही इस बच्चे से। मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। रही बात इस बच्चे की, तो इसे मैं इस दुनिया में लाकर अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती, इसीलिए इसे मैं अबॉर्ट करवा दूंगी। उस लड़के के कान गुस्से से लाल हो गए। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, आंखें खोली तो वो लावे की तरह धधक रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसी घटिया और गिरी हुई औरत की परछाई भी मैं अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। वो मेरी बेटी है, शांतनु मल्होत्रा की बेटी, अंशिका शांतनु मल्होत्रा। उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हें कभी उस तक पहुंचने नहीं दूंगा। कब तक रोक सकेंगे आप उन्हें? उस औरत से आपको नफरत है और आपके पास उसकी वजह भी है। हम आपके फैसले से सहमत भी हैं कि वो इस लायक नहीं कि उन्हें अंशिका की असलियत पता चले, पर आप उनके गुनाहों की सजा उस मासूम सी बच्ची को क्यों दे रहे हैं? जो हुआ उसमें उनकी क्या गलती है? क्यों वो मासूम सी बच्ची इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सजा भुगत रही है? आप तो उन पर अपनी जान छिड़कते हैं, फिर उनकी आंखों में आंसू देखकर भी पत्थर बने कैसे रह जाते हैं? क्या आपको उनकी उदासी नजर नहीं आती? भले ही आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कभी उनकी जिंदगी में उनकी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आप उस औरत से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, पर उनके लिए एक अच्छी सी माँ लाने के बारे में तो सोच सकते हैं ना? हमने आपको इतनी बार कहा कि अब तो शादी कर लीजिए, पर आप कभी हमारी सुनते ही नहीं हैं। हमारे लिए ना सही, अंशु के लिए ही शादी कर लीजिए, हमें बहू और उन्हें माँ मिल जाएगी। ये अर्पिता जी हैं, शांतनु की बड़ी माँ, जो पूजा कर रही थी पर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ऊपर आ गई थी। उनकी आवाज़ सुनकर शांतनु ने उन्हें देखा पर उसके भाव नहीं बदले। जैसे ही वो चुप हुई, शांतनु ने गुस्से में कहा, आप जानती हैं बड़ी माँ, मैं कभी शादी नहीं कर सकता। अब मुझे प्यार शादी जैसे शब्दों पर विश्वास नहीं है, ये शब्द बस एक धोखा है। मेरी जिंदगी में किसी धोखेबाज लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। आजकल की लड़कियों का कोई ईमान होता ही नहीं है, जहां पैसा मिले वो उसी की बाहों में समाने को तैयार हो जाती है। कोई रिश्ते की बंदिश उन्हें रोक नहीं सकती। मुझे ऐसी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करके अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। और रही बात अंशु के लिए माँ लाने की, तो जब जिस औरत ने उसे जन्म दिया वही उसकी माँ नहीं बन सकी, तो कोई और औरत अगर इस घर में आ भी जाती है तो क्या गारंटी है कि वो अंशु की जिंदगी में माँ की कमी को पूरा कर पाएगी? आज मैं जहाँ हूँ कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएगी, पर वो सिर्फ मेरे लुक्स और मेरे पैसों के लिए मुझसे जुड़ेगी। मैं आज आपसे भी आखिरी बार कह रहा हूँ, दोबारा शादी करने की बात मत कीजिएगा मुझसे। वो अब मुड़कर जाने लगा। वो बाथरूम में जाने ही वाला था कि अर्पिता जी ने पीछे से कहा,
आपकी ये सोच बदलने के लिए कोई ना कोई लड़की जरूर बनाई होगी भगवान ने, जो आपको इस बात का एहसास दिलाएगी कि दुनिया में सभी लड़कियां राधिका जैसी धोखेबाज नहीं होती और खून के रिश्तों से ज्यादा जरूरी दिल के रिश्ते होते हैं। बहुत जल्द ऐसी लड़की आपकी जिंदगी में आएगी, हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। वो जल्दी ही इस घर में ऐसी बहू भेजेंगी जो आपके दिल से इस नफरत को निकालकर आपको फिर से प्यार करना सिखा देंगी, जो अंशु को माँ का प्यार देंगी जिसके लिए वो आज तक तरसती आ रही हैं। वही वो लड़की होंगी जो हमारे घर को एक बार फिर खुशियों के रंगों से सजा देगी। ख्वाब अच्छा है बड़ी माँ, पर यह कभी हकीकत नहीं बन सकता। लड़कियां सिर्फ घरों को तोड़ने के लिए होती हैं, और मैं ऐसी किसी लड़की को कभी इस घर में नहीं आने दूंगा जो एक बार फिर मेरे परिवार को बिखेर कर रख दे। सालों पहले एक लड़की ने इस परिवार को टुकड़ों में तोड़ दिया था, जिन्हें आज तक मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदगी में औरत नाम की चीज से इतने धोखे खाए हैं कि अब औरत शब्द से भी मुझे नफरत है। अगर आप नहीं होती तो शायद औरत के सबसे सम्मानीय रूप से भी मुझे नफरत हो चुकी होती। इस दुनिया में औरत का हर रूप सिर्फ और सिर्फ मर्द को धोखा देने के लिए ही बना है। चाहे वो प्रेमिका बने या पत्नी, वो सिर्फ मर्द को तोड़ने का काम करती है। यहाँ तक कि माँ के रूप में वो अपने स्वार्थ की पूर्ति ही करती है, और अपनी खुशी के लिए ऐसे हर रिश्ते तोड़कर जाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचती। औरत के हर रूप से धोखा खा चुका हूँ मैं, अब वो गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। आपको अपने भगवान पर विश्वास है और मुझे खुद पर। अब जो शान आपके सामने खड़ा है वो 5 साल पहले वाला शान नहीं है, जिसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर लोग उसे छोड़ जाया करते थे। अब जो शान आपके सामने खड़ा है उसको धोखा देने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, और अब मुझे लोगों के धोखों से बचना भी आता है और ऐसे धोखेबाज लोगों को सबक सिखाना भी आता है। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गया। अर्पिता जी नम आंखों से बाथरूम के बंद गेट को देखते हुए बोली, कैसे समझाएं हम आपको कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक बार आपको धोखा मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपनी जिंदगी में आने ही ना दें। अकेले जिंदगी नहीं काटी जाती बेटा। आप भले ही कुछ भी कहें, पर हमें हमारे भगवान पर पूरा विश्वास है। उन्होंने आपके लिए ऐसी लड़की जरूर बनाई होगी जो आपको फिर से जीना सिखा सकेगी, जो आपके दिल से इन कड़वी यादों को मिटाकर उन्हें अपने प्यार के मीठे एहसासों से भर देगी। बस अब महादेव जल्दी से आपकी जिंदगी में उस लड़की को भेज दें जो आपको और अंशु को संभाल ले। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर बाद शान ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे पहुंचा। व्हाइट शर्ट पर ब्लैक 3-पीस सूट, गले में टाई, कलाई पर उसकी पर्सनैलिटी के पर सूट करती महंगी ब्रांडेड वॉच, पैरों में बूट्स, सलीके से सेट किए बाल और रौबदार चेहरा, उसका ऑरा ही कुछ अलग था। कमाल की पर्सनैलिटी थी उसकी, और अब तो एकदम बिजनेसमैन के रूप में वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो डाइनिंग एरिया में पहुंचा तो वहां एक आदमी पहले ही बैठे हुए थे, वो भी एकदम फिट थे। शान को देखकर वो मुस्कुराए। शान भी मुस्कुराकर उनके सामने वही चेयर पर बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बड़े बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा जी, बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो, सब ठीक है और आपका काम कैसा चल रहा है? उन्होंने मुस्कुराकर सवाल किया। बदले में शान ने भी बड़े आराम से अदब से जवाब दिया, जी बड़े पापा, कुछ वक्त से काम का लोड बढ़ा हुआ था, न्यू प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसी की कास्टिंग और बाकी सब की तैयारी में लगा हुआ था। आप बताइए आपका सोशल वर्क कैसा चल रहा है? जल्दी ही मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार टिकट आपको मिले और जीत भी आपकी हो। मेरे सबसे बड़े दुश्मन की हार के लिए आपका जीतना बहुत जरूरी है। वो अब एकदम गंभीर लग रहा था। उसकी बात सुनकर सुयश जी ने भी गंभीरता से जवाब दिया, हमारी सालों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। सालों से समाज की सेवा के में लगे हुए हैं, पार्टी में भी हमारी अच्छी पहचान बन गई है। इस बार टिकट भी हमें मिलेगा और जीत भी हमारी होगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। उनकी बात सुनकर शान के लबों पर शातिर मुस्कान फैल गई। टू बी कंटिन्यूड, आगे की स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक कॉमेंट करके बताइए कि शुरुआत कैसी लगी आपको।